स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 10 जुलाई और दिन बुधवार। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी जारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अमेरिकी उत्पादों पर बढ़ता शुल्क अब स्वीकार नहीं।
ये जो एक ओवरऑल माहौल बना हुआ है ट्रेड वॉर का, ये उसी का परिलक्षण है, क्योंकि जितने वैल्यू पर इसका असर होगा वो बहुत कम है।
गुजरात में उच्च जाति की महिला से शादी करने पर दलित युवक की हत्या। बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच सस्पेंड।
मेरा नाम पल्लवी है, आई एम फ्रॉम मिल्टन कीन्स, बट वी आर रियली लुकिंग टू सी फॉरवर्ड, सो प्रोबब्ली टुमारो इंडिया विल विन एंड वी गोना गो फॉर फाइनल।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। ब्रितानी विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री टेरिजा मे और राजदूत सर किम डैरोस के खिलाफ बयानबाजी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का बयान अनुचित और गलत है। हंट ने कहा कि अगर वो इस महीने होने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सर किम डैरोस को अमरीका में ब्रितानी राजदूत बनाए रखेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के दो दावेदारों ने टेलीविज़न पर अपनी अंतिम बहस में ब्रेक्सिट को लेकर भी अपनी राय रखी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो अक्टूबर अंत तक ब्रेक्सिट प्रक्रिया पूरी करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जबकि हंट ने कहा कि वो नहीं मानते कि ब्रेक्सिट के लिए करो या मरो जैसी समय सीमा रखने की ज़रूरत है। क्रिकेट विश्व कप का भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच मैनचेस्टर में कल बारिश के कारण सस्पेंड कर दिया गया। मुकाबला रोके जाने के समय न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन बनाए थे। रिजर्व डे के दिन आज मैच न्यूजीलैंड की पारी के 47वें ओवर से शुरू होगा। ब्राज़ील के एक जज ने इसी साल बांध टूटने की घटना में खनन कंपनी वेले को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इस साल जनवरी में मिनस गेराइस राज्य के ब्रूमाडिन्हो शहर के पास बना बांध टूट गया था, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि जज ने अपने आदेश में मुआवजे की रकम तय नहीं की है, लेकिन कहा है कि मुआवजे की रकम का इस्तेमाल मारे गए लोगों के परिजनों, प्रभावित कारोबारियों और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होना चाहिए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहन पर फ्रांस में मुकदमा शुरू किया गया है। राजकुमारी हसा बिंट सलमान पर आरोप है कि उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी अशरफ ईद नामक व्यक्ति को पीटने के आदेश दिए। राजकुमारी का कहना था कि पेरिस स्थित उनके घर में मरम्मत कर रहे इस व्यक्ति ने उनकी तस्वीरें खींची। राजकुमारी सलमान ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है और कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। राजकुमारी के सुरक्षाकर्मी के वकील यासीन बोजुरो ने भी कहा कि उनके मुवक्किल ने किसी भी तरह की हिंसा से इनकार किया है। उन्होंने कहा, हिंसा का आरोप लगाया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने किसी को बंधक बनाने या मारपीट से इनकार किया है। दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस ही हुई है। ये थे वकील यासीन वोजुरु के शब्द। मेक्सिको के वित्त मंत्री कार्लोस उर्जुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज ओब्राडोर के साथ आर्थिक नीतियों से जुड़े मतभेदों को बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्रालय में कई ऐसे अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं जिन्हें पब्लिक फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं है। उधर राष्ट्रपति ओब्राडोर ने एक वीडियो संदेश के जरिए वित्त मंत्री के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कभी कभी एक ही सरकार में या टीम में कुछ मामलों को लेकर समझदारी नहीं बन पाती, लेकिन हमें दृढ़तापूर्वक और आत्मसंयम से फैसले लेने होते हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए उनका इस्तीफा मंजूर करता हूं। मैंने उनकी जगह आर्तुरो इरेरा को वित्त मंत्री नियुक्त करने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जुलाई की 10 तारीख और दिन है बुधवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। जैसा कि अभी आपने विश्व समाचार में सुना कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की निंदा की है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला मैच बारिश की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमरीका और भारत के व्यापारिक रिश्तों से। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी बरकरार है। ताज़ा विवाद तब पैदा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि भारत एक लंबे अरसे से अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाता रहा है, लेकिन अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले महीने अमेरिका ने जहां भारत को GSP व्यापार स्कीम के तहत रियायत समाप्त करने का फैसला किया, वहीं भारत ने कुछ अमरीकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक ट्वीट में लिखा कि भारत अब तक अपनी मर्जी से बेधड़क अमरीकी सामानों पर शुल्क लगाता रहा है, अब ये मंजूर नहीं है। पिछले महीने 16 जून को भारत ने कई बार टालने के बाद 28 अमरीकी सामानों पर शुल्क लगा दिया था, जिनमें अमरीकी अखरोट, बादाम और सेब भी शामिल हैं। इससे पहले अमरीका के ट्रंप प्रशासन ने GSP व्यापार स्कीम के तहत भारत को व्यापार शुल्क में रियायत दिए जाने वाली सूची से बाहर कर दिया था और 5 जून से अमरीकी बाजार में आने वाले करीब 6 अरब डॉलर के भारतीय उत्पादों पर अब अमरीका 3-11% तक का शुल्क लगा रहा है। इस तरह GSP की रियायत खत्म होने के बाद से अमरीका द्वारा अब भारतीय उत्पादों पर करीब $200 मिलियन तक का शुल्क लगाया जा रहा है। GSP की रियायत खत्म करते समय ट्रंप ने एक अध्यादेश जारी कर कहा था कि चूंकि भारत ने अमरीकी सामानों के लिए भी अपने बाजार में बराबरी की पहुंच का आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए उसको अब कुछ सामानों पर व्यापार शुल्क मुक्त रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीका को खासकर अपने डेयरी उद्योग से संबंधित खाद्य सामग्री और मेडिकल उपकरणों को भारत के बाजारों में भेजने में मुश्किल होने पर एतराज है। भारत द्वारा अमरीकी उत्पादों पर शुल्क लगाए जाने के मामले पर ट्रंप की यह ताज़ा तरीन ट्वीट ऐसे समय में आई है कि जब अमरीका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि क्रिस विल्सन अपने दल के साथ इसी हफ्ते भारत में एक उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता करने वाले हैं। समझा जा रहा है कि ट्रंप ने वार्ता से ठीक पहले इस तरह ट्वीट के जरिए भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं अमरीकी व्यापारी जो भारत के साथ व्यापार वार्ता पर नज़र गड़ाए हुए हैं, उत्सुकता से मामले के हल की उम्मीद लगाए हैं। वाशिंगटन स्थित अमरीकी व्यापारियों की एक संस्था कोलिशन फॉर GSP के डैन एंथनी कहते हैं कि ट्रंप की एक ट्वीट से तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन हालात बिगड़ने नहीं चाहिए।
We're all sort of in the same spot where we need some sort of positive engagement and resolution between the governments in order to come out with a win.
हम सभी व्यापारियों को एक ही तरह की परेशानी है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों देश की सरकारें बातचीत करके इस मामले में कुछ हल निकालें जो सबके फायदे का हो, और जब तक बातचीत जारी है तो हमारी उम्मीद भी है कि शायद कुछ हल निकल सके। कोलिशन फॉर GSP संस्था के डैन एंथनी के शब्द। भारत द्वारा अमरीका की हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स पर 50% शुल्क लगाने के फैसले से भी ट्रंप नाराज हैं और कुछ अन्य उत्पादों जिनमें स्टील और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं उन पर भी भारत ने शुल्क बढ़ाया है। इस सिलसिले में अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन में भी मामला उठाया था। भारत और अमरीका के बीच 90 अरब डॉलर के उत्पादों का व्यापार होता है और अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हैं कि अमरीका और भारत के बीच दिल्ली में होने वाली व्यापार बातचीत किस हद तक मुद्दों को सुलझाने में कामयाब होती है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर इस तरह का ट्वीट क्यों किया और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर हो सकता है? यही समझने के लिए हमारे साथ ही दिलनवाज पाशा ने बात की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राम उपेंद्र दास से और पूछा कि ट्रंप अपने इस ट्वीट से आखिर कहना क्या चाहते हैं।
इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि भारत ने अगर समग्र रूप से आप देखें तो विशेषकर अमेरिकी वस्तुओं पर जो आयात शुल्क होता है वो नहीं लगाया था कभी भी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जरूर 28 वस्तुओं पर भारत ने लगाया है और वो जरूर जो अमेरिका के उत्पाद हैं उन पर ही लगाया गया है और इसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को वापस ले लिया था उसका एक संदर्भ था। तो एक तो पहलू यह है कि भारत ने कभी ऐसा किसी एक विशेष देश के लिए नहीं कर लगाया था आयात के लिए, जो अमेरिका के उत्पाद पर लगता था वही सारे जगह पे लगता था उन देशों को छोड़ करके जिनके साथ हमारा व्यापार समझौता है। दूसरी बात, हाँ ये सही है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ उत्पाद जो हैं जो कि अमेरिका से आयात होते हैं उन पर आयात शुल्क लगा है। अब मेरे विचार में इन चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए और भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध हैं, जो द्विपक्षीय वार्ता के लिए संभावनाएं हैं आर्थिक जगत में सहयोग के लिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उस पर जो विषय वस्तु दोनों साइड के केंद्र बिंदु हैं उस पर हमें विचार विमर्श करके एक ऐसी वार्तालाप की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों में व्यापार ही नहीं समग्र आर्थिक विकास में एक दूसरे के हम एक पार्टनर बन सकते।
भारत और अमेरिका कई मामलों में एक दूसरे के सहयोगी देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप जी को अपना दोस्त बताते हैं, ट्रंप साहब नरेंद्र मोदी जी को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन अगर बात व्यापारिक रिश्तों की हो तो ये कड़वाहट क्यों दिख रही है फिर? इसके अंडरलाइन क्या वजह है? क्या कोई और वजह है इसके पीछे, या जो हाल फिलहाल में जो टैक्स एक दूसरे पर कर लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है बात यहीं तक है?
जी, ये जो एक ओवरऑल माहौल बना हुआ है ट्रेड वॉर का, ये उसी का परिलक्षण है और इसको मैं इसलिए तरजीह ज्यादा नहीं दे रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि जितने वैल्यू पर इसका असर होगा वो बहुत कम है। अगर हम उसको देखें पूरे एक समग्र परिवेश में जो आर्थिक और व्यापारिक संबंध भारत और अमेरिका के बीच में संभावित है।
तो फिर सर आपको क्या लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा ट्वीट करने की क्या जरूरत महसूस हुई? ये बात किसी और फोरम पर और बेहतर तरीके से कही जा सकती थी, या आपको लगता है कि वो विकल्प जो है उनकी ओर से कहे जाने के अपनाए जा चुके हैं और अब सार्वजनिक तौर पर भारत का नाम लेकर इस तरीके से ये बात कही गई है?
उनकी अपनी आर्थिक और गैर आर्थिक कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जिसके तहत वो शायद ये कह रहे होंगे, वो इसके विषय में ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि ये विषय बिल्कुल ही भारत और अमेरिका की समग्र आर्थिक और व्यापारिक ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए और आगे की जो संभावनाएं हैं, लगभग $500 बिलियन का टोटल ट्रेड जो हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच में, उसको कैसे किया जाए, उसकी रूपरेखा क्या हो, कितने समय में हो, हमारा सारा हमारी ऊर्जा हमारी उसमें केंद्रित होनी चाहिए।
तो ये थे प्रोफेसर राम उपेंद्र दास। तो जो बात हो रही थी भारत और अमेरिका की, और अब बात करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान की आलोचना की है जो उन्होंने ब्रितानी प्रधानमंत्री और अमेरिका में ब्रितानी राजदूत के बारे में कहे थे। राजदूत किम डैरच का एक मेल लीक हो गया था जिसमें उन्होंने अमरीकी प्रशासन को अयोग्य करार दिया था। उसके बाद ट्रंप ने न केवल ब्रितानी राजदूत बल्कि ब्रितानी प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला था। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
अमेरिका में ब्रितानी राजदूत के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवरों को लेकर ब्रिटेन में भी सियासत तेज हो गई है। विदेश मंत्री और पीएम पद के दावेदार जेरेमी हंट ने कहा है कि ट्रंप का प्रधानमंत्री टेरिजा मे और राजदूत सर किम डैरोज को लेकर दिया गया बयान गलत और अशिष्ट है। टेरिजा मे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जेरेमी हंट और पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व हासिल करने की होड़ में हैं। अपनी आखिरी टेलीविजन डिबेट में हंट ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो सर किम को अमेरिका में राजदूत बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा,
The relationship between the UK and the USA is the most important alliance in history.
मैं ट्रंप की इस बात से सहमत हूं कि इतिहास में इंग्लैंड और अमेरिका सबसे अहम सहयोगी रहे हैं, लेकिन हमारा राजदूत कौन चुनेगा इसका हक ब्रिटेन सरकार और ब्रितानी प्रधानमंत्री को है। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि अगर मैं अगला प्रधानमंत्री बना तो वॉशिंगटन में मौजूदा अमरीकी राजदूत बने रहेंगे। ये थे ब्रितानी विदेश मंत्री जेरेमी हंट के शब्द। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि लीक्ड ईमेल प्रकरण के बाद वो ब्रितानी राजदूत से किसी तरह का वास्ता नहीं रखेंगे। हाल ही में लीक्ड हुए ईमेल में ब्रितानी राजदूत ने ट्रंप प्रशासन को अयोग्य और अकुशल बताया था। वॉशिंगटन में अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस से यह पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप के बयान का मतलब ये है कि अमरीका किम डैरोज से संबंध तोड़ लेगा, ओर्टागस ने कहा,
I don't speak for the president here, so I defer you to the White House for anything related to his comments.
मैं राष्ट्रपति की तरफ से तो कुछ नहीं कहूंगी, इसलिए इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए आपको व्हाइट हाउस ही जाना होगा। हमें इस मामले में कोई नए निर्देश नहीं मिले हैं। हम सभी मान्यता प्राप्त लोगों से संबंध बनाए रखेंगे जब तक कि हमें व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति से नए निर्देश नहीं मिलते। ये थे अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ओर्टागस के शब्द। यानी कि अब भी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सर किम के खिलाफ ट्रंप का बयान आधिकारिक है या उनकी निजी राय। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रेक्सिट को लेकर भी ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे पर निशाना साधा था और कहा था कि उन्होंने इस मुद्दे को बुरी तरह उलझा दिया है। इस बीच ब्रेक्सिट को लेकर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों ने अपनी राय रखी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो अक्टूबर तक ब्रेक्सिट प्रक्रिया पूरी करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जबकि हंट ने कहा कि वो नहीं मानते कि ब्रेक्सिट के लिए करो या मरो जैसी समय सीमा रखने की जरूरत है।
और अब बात खेल की। ब्रिटेन में इन दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला सेमीफाइनल बारिश की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। उसे आज पूरा किया जाएगा। मैनचेस्टर में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जब 47वां ओवर चल रहा था तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और आगे का मैच नहीं हो सका। सुनिए आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंग्लैंड में खेले जा रहे 12वें आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जो कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुआ वो आज पूरा किया जाएगा, लेकिन तभी जब इंद्र देवता मैनचेस्टर से दूर रहे। दरअसल कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर जब 46.1 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 211 रन था तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और उसके बाद खेल रोकना पड़ा। लंबे इंतजार के बाद निर्णय हुआ कि ये मैच आज पूरा हो। आज न्यूजीलैंड कल के स्कोर से ही आगे खेलना शुरू करेगा। कल जब न्यूजीलैंड ने मार्टिन गप्टिल और हेनरी निकोल्स के साथ पारी की शुरुआत की तो ऐसा लगा जैसे भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की सदी और स्विंग होती गेंदों के सामने उनके बल्ले को सांप सूंघ गया। 3 ओवर और 3 गेंद के बाद जब गप्टिल जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच हुए तब न्यूजीलैंड का स्कोर 1 रन था। हेनरी निकोल्स ने 51 गेंदों पर 28 रन बनाए। कप्तान केन विलियमसन ने 95 गेंदों पर 67 रन बनाए तो रॉस टेलर 85 गेंदों पर 67 रन बनाकर खेल रहे हैं। जेम्स नीशम 12 हैं और कोलिन डी ग्रैंड होम 16 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लेथम 3 रन बनाकर नाबाद थे। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 30 रन देकर 1, जसप्रीत बुमराह ने 25 रन देकर 1 और रविंद्र जडेजा ने 34 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। पांड्या और चहल थोड़े महंगे साबित हुए। देखना है आज बारिश की संभावनाओं के बीच भारत को जीत के लिए कितने रनों का लक्ष्य मिलता है और उसका परिणाम क्या निकलता है। उधर विंबलडन में कल महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए जिसमें जीत हासिल कर 7 बार की विंबलडन चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स, चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा, रोमानिया की सिमोना हालेप और यूक्रेन की इलीना स्वीटोलिना सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। कल 11वीं वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने अपनी ही हमवतन एलिसन रिस्के को 6-4, 4-6, 6-3 से हराया। सेरेना विलियम्स अब सेमीफाइनल में गैर वरीयता हासिल चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा का सामना करेंगी। बारबोरा स्ट्राइकोवा ने 19वीं वरीयता हासिल ब्रिटेन की योहाना कोंटा को 7-6, 6-1 से मात दी। उधर रोमानिया की सिमोना हालेप ने चीन की झांग शुआई को 7-6, 6-1 से हराया, जबकि यूक्रेन की इलीना स्वीटोलिना ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा को 7-5, 6-4 से मात दी। आज विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे जहां सेंटर कोर्ट पर शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना बेल्जियम के डेविड गोफिन से और दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का सामना 8वीं वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी से होगा। आज ही तीसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका के सैम क्वेरी और अर्जेंटीना के गुइडो पेला स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता गुट से क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे।
तो मैनचेस्टर में खेला जा रहा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल भले ही बारिश की वजह से सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन वहां आए दर्शकों और खासकर भारतीय समर्थकों में जोश की कोई कमी नहीं देखी गई। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव भी इन दिनों ब्रिटेन में है मैच को कवर करने के लिए। कल उन्होंने मैनचेस्टर में कुछ भारतीय समर्थकों से बात की।
मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड से समाचार ये कि इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल पहले दिन जो था वो अब सस्पेंडेड है प्ले। अब गेम खेला जाएगा रिजर्व डे के दिन और न्यूजीलैंड की पारी जहां पर ख़त्म हुई है वहीं से रिज्यूम होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट है या उम्मीद है या क्या है। पहले आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बीरपाल सिंह है सर।
कहाँ से है?
मैं टेरीगढ़ उत्तराखंड से हूँ।
उत्तराखंड से
हाँ जी।
कितने का टिकट लेके आए मैच देखने?
मैं 155 पाउंड का टिकट लेके आया हूँ।
हाँ, लेकिन बर्बाद तो नहीं हुआ टिकट?
नहीं, हम उससे टिकट कल भी यूज कर सकते हैं और कल हम आएंगे। हमारे पास मतलब कल का रिजर्व डे भी है और कल हमारे पास पूरा टाइम भी आने का,
पूरा टाइम
तो हम आएंगे कल यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली होती है क्योंकि पूरा टाइम निकाल के अगर आज भी पूरा रिजल्ट निकल जाता तो हमारा कल का टाइम बच जाता।
बिल्कुल बिल्कुल।
चलो, जो भी अच्छा हुआ, जो भी हमारे बॉलर बहुत अच्छा काम किया।
मैं भी उत्तराखंड से हूँ।
आप भी उत्तराखंड से?
हाँ जी, मेरा नाम रमोला है, राजन सिंह।
करते क्या है आप?
मैं शेफ हूँ।
आप शेफ है?
जी हाँ।
तो आप जैसे आज आप आए, वर्किंग डे था, कल आएंगे तो थोड़ा पैसे का नुकसान तो होगा एक दिन का?
नहीं नहीं, सेम टिकट है।
नहीं, आप अगर आप काम पर जाते तो?
हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम,
इंडिया के लिए हम क्या कर सकते हैं।
मेरा नाम लगाता हूँ, पहले आपसे बात करता हूँ। आप कहाँ से?
मेरा नाम पल्लवी है, आई एम फ्रॉम मिल्टन कीन्स। यहीं रहते हैं हम, इट्स लाइक 3 आवर्स। और
3 घंटे दूर से आप आए?
हाँ जी, 3 घंटे सुबह 5 बजे उठ के यहाँ आए हैं ड्राइव करके। सो बट आई रियली लव द एम्बियंस एंड माहौल बहुत अच्छा था और वी सपोर्टेड बोथ द टीम। हमें इट्स लाइक यू नो एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड, सो बट वी आर रियली लुकिंग टू सी फॉरवर्ड। सो प्रॉब्ली टुमारो इंडिया विल विन एंड वी गोना गो फॉर फाइनल्स एंड इंडिया विल विन द मैच।
तो आपको लगता है कि इंडिया जीतेगी?
इंडिया तो जीतेगी ही।
आप बताइए कि अब गेम फिर से वहीं से शुरू होगा, अगर आज पूरा होता तो बेटर था या अब कल होगा तब बेटर होगा?
आज अगर आधा होता तो शायद दिक्कत होती क्योंकि बारिश हो गई थी।
हाँ,
पेस बॉलर्स को फायदा मिलता है।
हाँ,
बट कल होगा तो अच्छा है, पूरा मैच देखने।
लेकिन कल भी बारिश के आसार है और आज से ज्यादा आसार है।
तो कल कल सर, कल जो फोरकास्ट देगा, कल 2 बजे के बाद फोरकास्ट आ रहा है।
हाँ,
2 बजे के बाद
मैच पूरा हो जाएगा। सारे इंडियंस को यहाँ पर देखेंगे डेफिनेटली,
तो मैच पूरा हो जाएगा। फर्स्ट इनिंग नहीं,
फर्स्ट इनिंग से मैच पूरा हो जाएगा आपको?
हाँ जी,
3 बजे तक मैच
हो जाएगा।
3 बजे तक अगर बारिश हो गई तो आपको पता है उसके बाद क्या हो सकता है?
उसके बाद इंडिया जाएगी फाइनल में
बिना मैच के।
बिना
मैच के लगे रन रहे क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी मतलब टॉप पे टीम है, तो उसका जो इंडिया को फायदा मिलेगा उससे डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी।
लेकिन चाहते हैं कि आप लोग की मैच हो ना?
मैच होना चाहिए क्योंकि हम आए हैं, यू नो स्पिरिट देखनी चाहिए, लोग कैसे खुश होते हैं। सो इट्स अ गुड फील।
अभी जो इंडिया की टीम है वो अभी तक की बेस्ट टीम है, तो देखने में भी मजा आएगा।
देखने में मजा आएगा
और हम चाहते हैं कि
जो भी टाइम मिलेगा मौसम अच्छा होना चाहिए।
3 घंटे दूर से फिर आएंगी?
हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जाएंगे फिर आएंगे।
कितना किराया खर्च होगा आपका ये बताइए 2 दिन आने जाने में?
लाइक कार से
करीब 50 पाउंड का पेट्रोल।
50 पाउंड का पेट्रोल लगेगा
एक दिन
का? और काम, वर्क प्लेस,
पार्किंग अलग लगेगी? 20 पाउंड
वर्क प्लेस ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए सब कुछ।
छुट्टी लीजिएगा या क्या बोलिएगा ऑफिस में?
छुट्टी लेंगे
एक दिन और छुट्टी?
हाँ जी, इंडिया
आप सब लोग छुट्टी लेंगे,
छुट्टी लेंगे फर्स्ट इनिंग।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे नितिन श्रीवास्तव। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है, बताएं दिनेश
जी। इकबाल, कर्नाटक में गठबंधन सरकार पर छाए संकट के बादल आज भी अखबारों की सुर्खियां बने हैं। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है, कर्नाटक गठबंधन को मिला समय, स्पीकर ने कहा 9 इस्तीफे तय फॉर्मेट में नहीं। स्पीकर के आर रमेश कुमार ने कहा कि कल कहा कि उनका ऑफिस सिर्फ उन 5 इस्तीफों पर ही अपनी प्रक्रिया शुरू कर पाएगा जो गठबंधन सरकार के बागी विधायकों की तरफ से दिए गए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में क्रिकेट विश्वकप के पहले सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड मुकाबले के बारिश में धुलने की खबरें तस्वीरों के साथ कई अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है एडवांटेज इंडिया ऑन रेनी डे। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है फाइनल की रेस में बारिश का ब्रेक, बाकी मैच आज। इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस बैंक में भारतीयों के खातों की सूचना जल्द भारत को मिलने की खबर पहले पन्ने पर छापी है। अखबार लिखता है कि जनवरी 2018 में हुए समझौते के तहत इस तरह की ये पहली सूचना होगी और ये जानकारी 30 सितंबर तक मिल जाएगी। देश भर में 110 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की खबर भी कई अखबारों में है। भ्रष्टाचार और अवैध हथियारों की तस्करी के 30 मामलों में ये कार्रवाई की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े मामले भी शामिल हैं। गुजरात में पत्नी को विदा कराने गए दलित युवक की ससुराल में हत्या की खबर भी कई अखबारों की सुर्खी है। बताया जा रहा है कि दलित ने एक ऊंची जाति की युवती के साथ विवाह किया था। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नरेश गोयल अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें बतौर गारंटी 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।
बहुत शुक्रिया दिनेश अखबारों की समीक्षा का। और अब चलते हैं गुजरात, जिसकी एक खबर का जिक्र अभी दिनेश ने अखबारों की समीक्षा के दौरान भी किया। गुजरात के अहमदाबाद के एक गांव में अपनी पत्नी को लेने पुलिस दल के साथ ससुराल गए एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक ने एक उच्च जाति की युवती से प्रेम विवाह किया था। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी तेजस वैद्य की भेजी रिपोर्ट सुनिए भूमिका राय से।
अहमदाबाद के वारमोर गांव में एक दलित युवक की पुलिस की मौजूदगी में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक उच्च जाति की लड़की से प्रेम विवाह करने वाले हरेश कुमार सोलंकी पुलिस टीम के साथ अपनी गर्भवती पत्नी को लेने गए थे। यहां लड़की के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। हरेश के पिता यशवंत सोलंकी ने बीबीसी को बताया,
मेरा बेटा उसकी बहू को लेने के लिए गया था, महिला मदद भी लेके गया था, पुलिस भी साथ में गई थी, पर वो चल के उतर के घर पे गया, पर उसको क्या किया पता नहीं, मेरे को उसको फोन किया है तो बोला मैं तो गाजीराम राव से हूँ, अभी गाँव में आया हूँ, लास्ट आया तो गाँव में आया हूँ।
यशवंत सोलंकी के मुताबिक उनका बेटा परिवार में इकलौता कमाने वाला था,
सिक्का गाड़ी चला रहा था, वो सब कम से कम 15-16 हजार मिलता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड करता था, उसमें भी मेरे को निकाल दिया था। अभी मेरे बापू जी की मरण की चीज में आया था तब से मेरे ड्यूटी पे लिया नहीं, अब घर पे बैठा, मेरे भी काम नहीं है, मेरे पास भी काम नहीं है।
हरेश ने अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए पुलिस के अभयम हेल्पलाइन पर फोन करके मदद मांगी थी। जब वो अपनी पत्नी के गांव पहुंचे तो पुलिस की टीम और काउंसलर उनके साथ ही थे। लड़की के परिजनों ने पुलिस वैन में हरेश को बैठे देखा तो उन पर हमला कर दिया। अब पुलिस ने उनकी हत्या के मामले में उनके ससुर समेत 8 लोगों को अभियुक्त बनाया है। अहमदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक आरवी असारी ने बीबीसी को बताया,
एक जन पकड़े गए अत्यारे बीजाबाद की, हमारी 5 टीमों ने शोधवा माटे अत्यारे कार्यरत छे, आरोपी छे ने एक
पुलिस इसे सम्मान के नाम पर हत्या का मामला भी मान रही है। गुजरात में हाल के महीनों में दलितों पर कई हमले हुए हैं। दलित अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन मकवान कहते हैं,
आंकड़े तो ये स्पष्ट दिखा रहे हैं, जो SC/ST कमीशन का भी आयोग का भी रिपोर्ट था 1990 से, गुजरात में पूरे देश में जो दलित है उसके सिर्फ 2.33% दलित गुजरात में रहते हैं, लेकिन अत्याचार में पूरे देश में गुजरात का स्थान चौथा आता है, एक रैंक बदल के मेरे ख्याल से 5 हुआ पिछले 5 साल में। लेकिन अब देखिए कि जो पॉपुलेशन है, बस्ती है, तादाद है, उसके हिसाब में 14वां नंबर है और अत्याचार में 4वां नंबर दलित अत्याचार में।
अहमदाबाद की इस घटना ने दलितों की सुरक्षा के सवाल को फिर से खड़ा किया है। सवाल ये भी है कि समाज के एक वर्ग को सुरक्षा दिए बिना क्या कोई एक राज्य के तौर पर गुजरात आगे बढ़ सकता है।
तो गुजरात के अहमदाबाद के गांव की ये खबर, जब एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने शादी की थी, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। महिला जो है वो उच्च जाति की थी। और अब एक बार फिर सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। ब्रितानी विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री टेरिजा मे और राजदूत सर किम डैरोस के खिलाफ बयानबाजी की निंदा की है। क्रिकेट विश्व कप का भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच मैनचेस्टर में कल बारिश के कारण सस्पेंड कर दिया गया, बाकी मैच आज खेला जाएगा। ब्राज़ील के एक जज ने इसी साल बांध टूटने की घटना में खनन कंपनी वेले को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहन पर फ्रांस में मुकदमा शुरू किया गया है। मेक्सिको के वित्त मंत्री कार्लोस उर्जुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज ओब्राडोर के साथ आर्थिक नीतियों से जुड़े मतभेदों को बताया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक मतभेदों के आधार पर ट्विटर यूजर्स को कानूनी रूप से ब्लॉक नहीं कर सकते। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। और अब इकबाल अहमद को अपने सभी साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।